और देखो कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हिदायत पाने के बाद तलाफात में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो इस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे, क्योंकि जब इंसान चंद लोग मिलके काम करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ी जिस चीज़ की कुर्बानी होती है वो अना की कुर्बानी है। शैतान दीन का काम करने वालों से फारिग नहीं हो जाता, बल्कि वहाँ तो वो अपने बड़े बड़े कारिंदे लाता है, क्योंकि वहाँ फिर जो झगड़े उठते हैं ना वो ज़ात के झगड़े हैं। मुझे ये समझा, ये मेरा काम है, अब ये भी मैं करूँ, ये मेरे हिस्से का काम है। अच्छा, फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं, फिर बोहतान भी लगते हैं, फिर शक के बीज भी बोए जाते हैं, फिर हर इंसान अपने आप को मजलूम भी समझने लगता है, फिर छोटी छोटी बातों पर इंसान अपनी ज़ात को इतना बड़ा कर देते हैं कि दीन को बालाए ताक रख कर अपनी जान को बचा कर एक तरफ हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि जब तक तुम अपनी ज़ात से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक तुम्हें अल्लाह का दीन अपने सगे बच्चों जितना प्यारा ना हो जाए, तब तक दीन नहीं फैलेगा। देखिए, नेमतें कुरान अल्लाह ने हमें दी, ईमान की नेमत दी, इस्लाम की नेमत दी, फिर भी अपनी ज़ात के लिए रो रहे हैं। आज नहीं लगता कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी ज़ात की पड़ी हुई है? हाय मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फलां, हाय मैं वो। मजबूरियाँ अल्लाह को पता है, कोई किसी पर तनकीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत से दुनिया में आप जैसे कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बात कर रही हूँ कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, एक लम्हे के लिए वो हालात सामने रख लें जब अल्लाह के नबी आए। औरतों की क्या इज्जत थी, पैदा होते ही बच्चियों की गर्दनें काट दी जाती थी, औरत को विरसे से महरूम कर दिया जाता था, विरासत के माल की तरह बटती थी, शोहर के मरने का गम कम होता था, ये गम ज़्यादा होता था कि किसका कपड़ा मेरे ऊपर डल गया वो मेरा वारिस होगा। आप ख़ुद को सोचें, एक औरत बनते हुए आप अपने शोहर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, और अगर आपको पता चले कि अगले ही लम्हे कोई मर्द उठेगा और कोई कपड़ा डाल दे, ये अरब की एक रस्म थी कि जब कोई मरता उसकी बेवा के ऊपर ख़ानदान के मर्द एक कपड़ा फेंकते, जिसका कपड़ा उस औरत के ऊपर डल जाता वो औरत उसकी होती, वो उसको बेचे, उसके साथ ताल्लुक़ कायम करे, उसको कुछ भी कर दे, माँ बना ले, बहन बना ले, बेटी बना ले, वो उसकी हो जाती। मुझे लगता है औरतें तो इस बात पर रोती होंगी, इसीलिए तो आज भी दुनिया के कुछ हित्तों में औरतें सती हो जाना बर्दाश्त कर लेती हैं कि जिंदा रहीं तो शायद हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। औरतें नहीं फिक्र करती अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, कितनी शान दी, इतने अजनबी बन के रहोगे इस दीन से, इतनी शान बेनियाजी है कि तुम्हें इस नेमत की कदर नहीं। कहा, मत हो जाओ उन लोगों की तरह जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हिदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज़ सख्त सज़ा पाएंगे। यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूहुन, बस उस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, यानी अपने काम को करके गए होंगे, और कुछ लोग स्याह होंगे, जिनका मुँह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया, अच्छा तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, इनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी, हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इरशादात हैं जो तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का इरादा नहीं रखता। और रह गई बात कि तुम अल्लाह के लिए कुछ करो, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों का मालिक वो है, और सारे मामला अल्लाह ही के हजूर पेश होने वाले हैं। इन आयात की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनका लकब ही मुफस्सिर कुरान है, वो कहते हैं कि यहाँ सफ़ेद चेहरे और स्याह चेहरे वालों से अहले सुन्ना और अहले बिदा मुराद है, यानी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत को लाते हैं, वो बीच रास्तों में नहीं अटक जाते, वो इंसानों की मुरतब की हुई किताबों को कुरान और हदीस के बराबर नहीं करने लगते, वो उनको गलती से मुबर्रा समझने लग जाते हैं और कुरान और हदीस की सही बात झुटला देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि भाई ये तो बात है लेकिन हम क्या करें, हमारे इमाम का ये फतवा, हमारे मौलवी साहब ये कहते हैं। कहा कि वो लोग सफ़ेद चेहरों वाले होंगे, और जिन्होंने अपने आप को मनपसंद चीज़ों में रखा अहले बिदा, वो स्याह चेहरों वाले होंगे। इसी तरह इस आयत की एक तफसीर में आता है कि उम्मत को फ़िरकों में बांटने वालों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे, और जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की कोशिशें की, मुत्तहिद करने की कोशिशें की, वो सफ़ेद चेहरों वाले होंगे। दुनिया में देखिए ज़रा, आप सारा दिन आप काम करते हैं, थक के चूर हो जाते हैं, लेकिन जो उस दिन घर में प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हो गया, मेहमान भी खुश गए, खाना भी अच्छा पका, पेश भी अच्छी तरह हुआ, आप उस थकन को महसूस करके क्या सोचते हैं? कहते हैं मुझे थकन नहीं हुई, आई एम वेरी फ्रेश, बहुत खुश हूँ। काम करके उसकी कामयाबी के बाद जो थकन होती है ना, वो बहुत असुदा करती है। इसके बरक्स आप थोड़ा सा काम करें लेकिन इंतहाई गलत तरीके से हो, गड़बड़े होती रहें, काम अच्छा ना हो, तब वो झलझल से उठते हैं, कहते हैं आज मज़ा नहीं आया, थकन हो गई। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूंजी को सही जगह लगा लिया, यदून इलल खैर व यामरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, वही बात याद रखिए जो दूसरे पारे का पहली बात थी कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दुनिया में अपना पैगाम देने के लिए पहुँचाया। जिन्होंने ये काम कर लिया अपनी कोशिश से, बोल सके, लिख सके, कह सके, एक को सुना सके, 100 को सुना सके, पैगाम दे दिया, कल कब्र में जाएंगे तो उनको आवाज़ मिलेगी, नम कनौमतिल उरूस। हदीस में आता है कि एक मुत्तकी, एक नेक शख्स जब मरता है तो कब्र में जब उसको डाला जाता है तो उस वक्त फरिश्ता उसको कहता है सो जाओ, जैसे एक नई नवेली दुल्हन सोती है। हमें पता है तुम बड़ी मेहनतें करके आए हो, तुम बड़ा थक थक के आए हो, आज सो जाओ। जब जन्नत में वो मिलने जाता है दूसरी रूहों से तो कुछ रूहें उससे हालात पूछती हैं, तो कुछ नेक और समझदार और तहम्मुल वाली रूहें कहती हैं भाई सब्र तो करो, ये बड़ा थका हुआ आया है, इसने बड़ा काम किया, ये अपनी ज़िंदगी के एक एक मिनट को ज़ाया होने से बचाता था, इसको थोड़ा आराम तो करने दो। फिर पुकार लगती है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, अपनी मौत को हम याद करें, हम चाहते हैं इत्मीनान की मौत आए तो इस ज़िंदगी में काम कर लीजिए। मोमिन सारी ज़िंदगी काम करता है, उसका सोना कब्र का है, और सोने के बाद जो खूबसूरत ख्वाब जो उसको हकीकत दिखता है वो उसकी जन्नत है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं, ये खाने की जगह नहीं, ये सिर्फ़ अपनी ज़ात अपने घर बनाने की जगह नहीं, क्योंकि हर दिन बोल बोल के पुकार रहा है कुल्लू मन अलैहा फान, आज बनाते हो कल बिगड़ जाता है, आज साफ़ करके खुश होते हो सुबह उठते हो फिर बच्चे गन डाल देते हैं, पेट भर के सोते हो सुबह उठते हो फिर पेट में दर्द हो रही होती है कि खाना मांग रहा है। ये दुनिया तो खसारा है। वलसर इन्नल इंसान लफी खुसर, वो काम करो, वहाँ के घर सजाओ, वहाँ के कपड़े बनाओ कि जहाँ जाने के बाद कपड़े पुराने नहीं होंगे, जिनके घर की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी। इस हुसन को क्या सजाने के लिए घंटों पार्लर्स में बैठते हो, आज कर लोगे एक हफ्ते के बाद फिर पुराने के पुराने। अल्लाह तुम्हें वहाँ लेके जाएगा कि जन्नती औरत की एक झलक चाँद की रोशनी, सूरज की रोशनी को बंद कर दे। शरबत पिए और उसके जिस्म से जहाँ से गुजरे क्रिस्टल की डॉल की तरह उसके जिस्म से सुर्ख पानी की तरह वो महसूस हो। हम कहाँ खो गए? अल्लाह हम सबको दावत देता है कि आओ लोगो, बाकियों को तो छोड़ो। देखिए अल्लाह कभी दूसरों को नहीं पुकारता, अल्लाह की सारी नज़रें मुसलमानों पे हैं और मुसलमानों के बाद भी सारी नज़रें अल्लाह की कुरान वालों पे हैं। हम तो दो तरह से खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए है ना, कभी सोच के देखें झंझोड़ें ख़ुद को, अगर कहीं और पैदा की जाती तो आज कहाँ होती। है ईमान में हरारत है, इतना इल्म के दीन सीख के इस्लाम की तरफ आते, क्या इतनी कमर में ताकत है कि इस्लाम की कीमत पे अगर पत्थर रखे जाते कमर पे या आग पे लटाया जाता तो आते। कुर्बानियाँ तो आज हम तो बात नहीं सुन सकते, कहाँ इस्लाम की कीमत देते। तो हमें एक तो इस तरह से खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने बग़ैर किसी फितने में डाले उम्मत मुहम्मदिया में शामिल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे तो मैं तो अपने आप को ऐसे समझती जैसे पूरे का पूरा इंसान किसी पानी की बाल्टी में डिप किया हुआ, पानी भी क्या होगा, कितनी गहरी चीज़, कोई लिक्विड सोच लें जिसमें आप अपने आप को पूरा डूबा महसूस करें, उस रहमत में डूबा हुआ महसूस करें कि अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ा हुआ है। आज आप कुरान के लिए घर से निकले, क्या आपको घर से निकलते हुए अपने ऊपर रश्क आया, आपको अल्लाह की मोहब्बत महसूस हुई? कितनी दफ़ा आपकी गाड़ियाँ निकली, कितनी दफ़ा आप बसों वैगनों में बैठे होंगे लेकिन अल्लाह आपको कुरान के लिए निकाल लाया, ये डबल रहमत है। अल्लाह कहता है इस रहमत को महसूस करो, इसका हक अदा करो। कुन तुम खैरा उम्मतिन, इसको तो चार दफ़ा हाईलाइट कर लें, जितने रंग के मार्कर हैं उनसे हाईलाइट कर लें, तुम हो वो बेहतरीन उम्मत। कुन तुम चले अरबी को उर्दू से मिला लें तो कुछ ना कुछ तो लफ्ज़ मिलते हैं ना, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो बेहतरीन गरो हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। कभी महसूस की है ये जिम्मेदारी? अल्लाह हमें कह रहे कि तुम्हें लोगों के लिए मैंने निकाला, और हम कहाँ खो गए, आज कहाँ खो गई उम्मत मुस्लिमा? क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया की क्लीनिंग का काम दिया था, अल्लाह ने हमें गंदगियों के अंदर सफाई करने वाला भेज दिया? अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा इस मनहज को भूल गई, आज उसको खुद भी अपनी इस जॉब का पता नहीं। देखिए जो वर्कर जॉब पे ना पहुँचे उससे शिकवा है, लेकिन जिस वर्कर को पता ही नहीं कि आज मेरी जॉब है, उससे क्या शिकवा? आज पता है जिनको वो बैठ जाए उनके लिए तो रोना आना उससे ज़्यादा है जिनको पता ही नहीं। जानते बूझते समझते बूझते अगर हमारे पांव इस्लाम से पीछे होने लगे, अगर हम दीन से पीछे होने लगे, अगर आज अल्लाह हम नाकारों से कोई काम करवाने लगे और हम पीछे हट जाएं, तो फिर अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तो हालत उस तरह की है कि जानते बूझते पीछे हो गए। सोचो आज कोई उठे और उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे दे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम लोगों की इस्लाह और हिदायत के लिए निकाले गए। पूछिए जाके लोगों को, इफ्तारी करते हुए लोगों को पूछिए, जुमे का खुतबा सुन के बाहर आने के बाद पूछिए, बताओ क्यों लाए गए दुनिया में, उम्मत मुस्लिमा क्यों आई? कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, हज करने के लिए, हर साल उम्रा करने के लिए। लेकिन वो असल मकसद आज उम्मत को भूला हुआ, और जब उम्मतें अपने असल मकसद को भूल जाती हैं तो अल्लाह ताला दुश्मनों को उनके सरों पे गालिब कर देता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तामुरूना बिलमारूफी वतनहौना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्ला, तुम नेकी का हुक्म देते हो, सवाल करें खुद से, देती हूँ नेकी का हुक्म, तुम बदी से रोकते हो, क्या मैं बदी से रोकती हूँ, और अल्लाह पर ईमान रखते हो, ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, हाय अफसोस, ये अल्लाह के नबी के साथ तासुब रखने वाले अगर मान जाते तो इनका ही फ़ायदा था, इस्लाम को तो इनसे क्या फ़ायदा होता, इनको खुद फ़ायदा होना। अगरचे इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ तुम्हें सता सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी खुशखबरी अल्लाह ने दी, मुसलमानों तुम क्यों डरते हो कि सब हमारे खिलाफ़ हैं, सब हमारे खिलाफ़ बातें करते हैं, कहा ये तुम्हें सिर्फ बातें सुनाएंगे, टॉर्चर कर देंगे, बुली कर देंगे, तुम्हें मुल्ला कह देंगे, मौलवी कह देंगे, तुम्हें मुसलमान होने के नाम पे मजाक कर देंगे, कहने दो, तुम्हारा अमलन कुछ नहीं कर सकते। आज भी देख लीजिए सिर्फ गीदड़ भपकियाँ, एक दफ़ा एक मुसलमान लीडर खड़ा हो जाए सामने आँखों में आँखें डालने वाला, कोई भी बात नहीं कर सकेगा, सब पीछे हट जाएंगे, कहा ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हाँ अगर ये तुमसे लड़े तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर बुलेट फेंकना और बात है, और मैदान जंग में आके मर्दों की तरह लड़ना और बात है, कहा ये कभी सामने नहीं आएंगे, और तारीख गवाह है कि इस गिरोह ने कभी मुसलमानों के सामने आके तलवारें पकड़ के लड़ाई नहीं की, साजिशों के जाल बुने, दूसरों को आगे रखा, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी, ये जहां भी पाए गए इन पर जिल्लत ही की मार पड़ी, कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है, ये अल्लाह के गज़ब में घिर चुके, इन पर मुहताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई, और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयात से कुफर करते रहे, इन्होंने पैगंबरों को ना हक कत्ल किया, ये इनकी नाफरमानी और ज़्यादतियों का अंजाम है। हाँ मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं, इसके आगे सजदा रेस होते हैं, अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान लाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं, ये सालेह लोग हैं। ये किन की बात है? ये वो लोग जो यहूद में से मुसलमान हो गए थे अल्लाह के नबी के दौर में। क्या इनका पिछले दीन के ऊपर होना इनकी नेकियों में कमी करेगा? हरगिज़ नहीं। फरमाया वमा यफ़लू मिन खैरिन फलन यकफुरू, और जो नेकी भी ये करेंगे इसकी ना कदरी ना की जाएगी। अल्लाह ताला परहेज़गार लोगों को खूब जानता है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया, तो अल्लाह के मुकाबले में इनको ना इनका माल कुछ काम देगा और ना औलाद, वो तो आँख में जाने वाले लोग हैं और आँख ही में हमेशा रहेंगे। यानी वो माल और औलादें जिन्हें इनको अल्लाह के दीन से रोका था, दुश्मनियों में आगे दीन की, वो सब कल क़यामत के दिन इनके काम ना आएंगी। और जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च कर रहे हैं, इसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया और इसे बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ اسلام کے نام پہ بنی ہوئی کوئی جماعت؟ اور لکھ دو کہ ہم چونکہ فلاں جماعت، مسلمانوں کی جماعت، جماعت المسلمین، جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ان پہ فخر کرو۔ نہیں، مراد کیا کہ تم مسلمان، تم دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، دوسروں کو اگر تم اپنا سمجھو تو اسلام کی بنیاد پہ سمجھو۔ تم ان کو اس نیت سے نہ دیکھو کہ وہ تمہارے دین کا کام کیسے کر رہے ہیں اور تمہارے نام کے ساتھ وہ کیسے لگے ہوئے۔ پھر فرمایا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی تو ان کو محبوب ہے، وہ سارا قابو کرنا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ فلاں میری ترقی دیکھ کے غصہ کھاتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہے جو آپ کو اچھی جاب کے ملنے پر غصے میں، کیا لگے گا؟ غصہ آئے گا نا۔ آپ کہیں گے اچھا اپنا ہو کیسا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ ان کو تمہاری ترقیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے، ان کو اچھا تھوڑی لگتا ہے، لیکن ان کی کچھ حالت بتائی کہ کیا کرتے ہیں غصے کی حالت میں۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ سچ، تم تو ان کی چیزیں خوشی خوشی اپناتے ہو، یہ تمہاری نہیں اپناتے۔ تم نے ان کے کہنے پہ اپنے کپڑے ہلکے کر دیے، انہوں نے تمہاری دیکھا دیکھی خود کو کپڑوں میں نہیں ملبوس کیا۔ میں سوچتی ہوں، یہ کوئی پردے یا لباس اور حجاب کی بات نہیں ہونے لگی، میں سادی سی ایک بات سوچتی ہوں جس میں کبھی کبھی مسکرا بھی دیتی ہوں، کہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم دوسروں سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کے حال حلیے کو اپنائے بغیر باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے۔ چلے ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ اپنے جسم کو آدھا کھولیں آدھا ظاہر کریں، ہم بھی کر لیں۔ کبھی یہ فیشن آج تک کیوں نہ نکلا کہ سارے چہرے پہ نقاب ڈال لیں؟ پاسبل تھا کہ نہیں؟ شیطان کیوں ایسی چیزوں کو فیشن نہیں کرتا؟ جب وہ کپڑے نے اتاروا دے، جب بازو ننگے کروا دے، کچھ بھی کروا دے، کیوں فیشن نہ آیا؟ آج تک یہ فیشن کیوں نہ ہوا کہ دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے لگ جائیں، ان کی عید منانے لگ جائیں؟ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ اب اتنی باتیں سن کے ایک دم غضب آتا ہے، ہائے اتنا دشمن ہے ہمارا، اس کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ میں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، تو پھر دل چاہتا ہے کہ پکڑو، مارو، گالیاں دو ان کو، ان کی امبیسیز کو جا کے جلا دو، یہ کرو۔ کہا نہیں، تم سب کچھ چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں کرو گے۔ کرو کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اختیار کرو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو، جو کچھ وہ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یہ ہیں وہ دو ہتھیار جو بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے پہ مسلمانوں کو کام دیں گے۔ ریئیکشنری مت ہو جاؤ، مت تم ان کے نام خلاف باتیں کرو، مت اپنی سڑکوں پہ لکھو فلاں ملک مردہ باد۔ آج ہوتا کیا کہ ہم کرنے کرانے کے تو کچھ ہے نہیں، عملی میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ وہ کوئی نان مسلم یا نان اسلامک شخص ہمارے خلاف بات کرتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو ایک گروپ لے کے جاؤ اور ان کی جا کے بسوں کے شیشے توڑ۔ اپنی بسوں کے توڑاتے ہیں، ان کی تو کیا توڑنی تھی، ان کی امبیسیز توڑیں گے تو اب ہمیں ہی اس کا نقصان دینا پڑے گا۔ ایسے اسلام نہیں پھیلتا۔ کام کرو، صبر کرو، ریئیکشنری نہ ہو، تقویٰ رکھو، یعنی تقویٰ کے نتیجے میں اللہ کے دین کو تقویت دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہو کر اجتماعیت کے اوپر آ جاؤ، ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی۔ آج بھی مسلمانوں کو یہی کرنا پڑے گا۔